मैंने सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे शादी की थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गरीबी में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। इसलिए मैंने अमरेंद्र के साथ, शान और शौकत के साथ एक नई ज़िंदगी जीने का डिसीजन लिया। अब आगे, और मैंने वीर को उसका बेटा बना दिया था। लेकिन सच तो ये है कि अमरेंद्र कभी बाप ही नहीं बन सकता था। उसके अंदर बाप बनने की क्षमता ही नहीं थी। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अमरेंद्र से ये झूठ बोला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ताकि वो मुझसे शादी कर लें और मैं आसानी से उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाऊँ। क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मुझे प्यार तो बहुत मिला, लेकिन वो पैसा और पावर नहीं मिला जो मैं शुरू से चाहती थी। और तुम अच्छी तरह से जानते हो, कॉलेज से ही अमरेंद्र मेरे पीछे पागल था, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पागल थी और मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी। वसुंधरा बड़ी ही बेशर्मी से अपने किए गए काले कारनामों का चिट्ठा अभिमान के सामने खोल रही थी। वसुंधरा के शब्द सुनते ही अभिमान जी का चेहरा एकदम से जम गया। अभिमान जी के सर में तो ब्लास्ट होने लगा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वसुंधरा इतनी गिरी हुई औरत हो सकती है। क्या वीर वाकई उसका बेटा था? ये सारी बातें उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। लेकिन वसुंधरा का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखकर उनके चेहरे पर उस समय अचानक काफ़ी तनाव दिखाई देने लगा। फिर अचानक वसुंधरा ने वीर को वहां बुलाया और वीर के सिर के बालों को तोड़कर अभिमान के हाथों में थमाते हुए बेपरवाह अंदाज में बोली, जाओ जाकर इन बालों का डीएनए का टेस्ट करवाओ। ये कुछ शब्द अभिमान के लिए हथौड़े की तरह थे। अभिमान जी सत्ते में आ गए और उनकी हैरानी और घबराहट दोनों बढ़ गई थी। 2 से 3 दिन तो उन्होंने यही सोचने में गुजार दिए कि वो डीएनए टेस्ट करवाएं या ना करवाएं, लेकिन फिर उन्होंने अपने कुछ सोर्स का इस्तेमाल करते हुए टेस्ट करा लिया था। अभिमान जी बातें सुनकर दादाजी को जोर का झटका लगा था, लेकिन खुद के इमोशंस शांत करके वो सिचुएशन संभालते हुए बोले, फिलहाल हम अरमान को इस बारे में बताकर उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें और बढ़ा नहीं कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे दादाजी ने अभिमान को ये बोला, वैसे ही अभिमान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। लेकिन अब उनके दिल में एक कश्मकश सी हो रही थी, ये जानकर कि उनका एक और बेटा है वीर, जिसे वो कभी देखना भी पसंद नहीं करते थे, वहीं उनकी अपनी औलाद है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करें। जल्दी ही दादाजी अभिमान को समझाने के बाद कमरे से बाहर आ गए थे, और कमरे से बाहर आने के कुछ देर बाद जैसे ही उन्हें अरमान के फ़ैसले के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से ठिठक गए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अविनाश और अविनाश के दादाजी के लिए अच्छा भी लग रहा था कि चलो अरमान ने इतने दिनों के बाद कम से कम आस्था को कहीं जाने की परमिशन तो दे दी। लेकिन अंश के बारे में सोचकर वो थोड़ा भावुक हो गए, तो इसीलिए उन्होंने अंश को ढेर सारा प्यार जताना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद आस्था और अरमान फ्रेश होकर नीचे आ गए और आस्था बारी बारी से सबसे मिलने लगी थी। आस्था के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अरमान से दूर होने के ख्याल से ही उसका दिल भारी होता जा रहा था। फिलहाल आस्था जल्दी आकर सबसे मिलती है और उसे इस बात के बारे में भी पता चल चुका था कि नानी माँ ने उसके साथ जाने से मना कर दिया है। ये जानकर आस्था ने मुंह बनाया और नानी माँ से झूठी नाराज़गी का दिखावा करते हुए बोली, नानी माँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमसे ज़्यादा रौनक और रश्मि दीदी से इतना प्यार करने लगेंगी। हम अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ सिर्फ उनके लिए ही आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती है ना? जैसे आस्था ने बनावटी नाराज़गी से ये कहा, वैसे ही नानी माँ ने तुरंत आस्था को गले से लगाते हुए कहा, गोरी बिटिया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ जाने के लिए हाँ भी कह देते तो तुम ज़बरदस्ती हमें यहीं छोड़कर जाती, क्योंकि तुम खुद से पहले दूसरों का ख्याल रखती हो। और हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम रौनक बिटिया और रश्मि बिटिया को ऐसी हालत में छोड़कर हमें अपने साथ आने की इजाज़त कभी नहीं देती। ये सुनकर रश्मि ने भी आकर आस्था और नानी माँ को गले से लगा लिया था। राधिका वंशिका एक दूसरे को देखने लगी और देर न करते हुए उन्होंने भी आकर गले लगा लिया था। एक पल में ही वहाँ का माहौल एकदम ही इमोशन से भर चुका था। तभी आहान ने अपना गला थोड़ा खना रचते हुए उन्हें टोका, ओहो बस करो आस्था भाभी केवल कुछ दिनों के लिए जा रही हैं और आप लोग तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि भाभी मायके से अपनी ससुराल जा रही हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ उल्टा है, यहाँ भाभी ससुराल से अपने मायके जा रही है, तो प्लीज़ इस सिचुएशन पर इस तरह की फीलिंग मत दो, पता है सभी लोगों को पर इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही आहान ने मस्ती भरे अंदाज में ये कहा तो ये सुनकर वैसे ही लड़कियाँ मुँह बनाकर रोते रोते मुस्कुरा दी थीं। वहीं ध्रुव आगे आया और आस्था के पास जाकर धीमी मगर शांत आवाज़ में बोला, आस्था भाभी अगर आपका इरादा यहाँ से कहीं जाने का नहीं है तो आप हमें बता सकती हैं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये सुनकर अविनाश की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वो ध्रुव को अनमने ढंग से देखने लगा। ध्रुव की बात सुनते ही आस्था अगले ही पल हंसते हुए बोली, कुछ दिनों की ही बात है और आप तो जानते हैं ना कब से हम अपने दादाजी से मिलना चाहते हैं। आज तक हमने उन्हें सिर्फ वीडियो कॉल्स पर ही देखा है, लेकिन अब हम उन्हें सामने से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अब आस्था की ये बात सुनकर सभी कुछ पल के लिए खामोश हो गए थे। वहीं अरमान के दिल में एक अजीब तरह का तूफान उमड़ रहा था। इस वक्त अरमान की गोद में उसका अपना बेटा अंश सिन्हानिया था और वो लगातार अंश को एकटक देख रहा था।
फिलहाल जब सब एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब मौका पाकर अरमान अंश को अलग ले आया और उसे लगातार यहाँ वहाँ घुमाने लगा। अब अंश, जो इस वक्त अपने पिता डेविल किंग की गोद में था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने पिता की ओर देखकर कहना चाहता हो, ओहो क्या बात है डेविल डैडी, इस तरह से मुझे क्यों घूर कर देख रहे हो? अब मैंने क्या किया? आप खुद अपनी बीवी को मेरे साथ भेज रहे हैं, मैं खुद थोड़ी लेकर जा रहा हूँ जो आप इस तरह की शक्ल बना रहे हैं। ये सारी बातें अज्यूम करते ही अरमान ने तुरंत अंश को देखकर धीमी आवाज में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी माँ का वहाँ ध्यान रखना, ठीक है? उस पर इतनी सी भी आंच नहीं आनी चाहिए और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू नहीं बहना चाहिए। मैं पूरी तरह से तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ, याद रखना। अरमान द डेविल किंग अपने 3 महीने के बच्चे को इस तरह से ऑर्डर दे रहा था मानो कि वो अपने किसी 18 या 20 साल के बच्चे को ऑर्डर दे रहा हो। वहीं अंश के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे थे मानो जैसे कि वो अरमान की एक एक बात को समझ रहा हो और अरमान जो कह रहा है वो पूरी तरह से उसकी बात मानने वाला हो। फिलहाल अरमान ने एक नज़र अपने आसपास यहाँ वहाँ अच्छी तरह से देखा और जब उसे लगा कि वो इस वक्त अकेला है तो तुरंत उसने अपने बेटे के माथे को चूम लिया था। अरमान खुलेआम सबके सामने अपने बेटे को प्यार नहीं कर पाता था क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता था। वो अकेले में ही अपने बेटे पर जी भर के प्यार लुटाया करता था। इस तरह से खुलेआम अंश को प्यार करना उसे कुछ अजीब लगता था या फिर उसका ओरा ही ऐसा था जो उसे इजाजत नहीं देता था कि वो इस तरह से अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग किसी सामने जाहिर करे। फिलहाल अंश तो अरमान के गोद में ही सो चुका था लेकिन फिर भी अरमान लगातार आधे घंटे से सिर्फ उसे आस्था का ध्यान रखने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा था।
अंश, जो कि अरमान की बातें सुनकर बोर हो चुका था, अब देर न करते हुए वो एक गहरी नींद में सो चुका था। अंश के सोते ही अरमान ने उसे उठाना शुरू किया। वो कभी उसके कान को पकड़कर थोड़ा सा हिला रहा था, कभी उसके गाल को पकड़कर थोड़ा सा हिला रहा था और लगातार उससे बोल भी रहा था, तुम इस तरह से मेरी बातों के बीच में नहीं सो सकते हो, तुम मेरे बेटे हो और अभी तक तुमने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी है और मैंने तुम्हें इस तरह से बीच में सोने की कोई परमिशन नहीं दी है। अरमान जब अंश को जगाने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त दादाजी और अभिमान जी वहां आ गए और अरमान के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए बोले, बेटा उसे सोने दो, वो अभी छोटा बच्चा है, वो तुम्हारी बातें नहीं समझ सकता है और अगर तुम अपनी बीवी और बेटे से दूर नहीं रह सकते हो तो तुम उन्हें खुद से दूर क्यों भेज रहे हो? ऐसा क्या हुआ है जो तुम उन्हें खुद से दूर भेजना चाहते हो? तुम अपने प्राइवेट जेट से भी तो आस्था को उसके दादाजी से मिलवाकर लेकर आ सकते हो ना, तो फिर तुम्हें आस्था बिटिया को वहाँ कुछ दिन रहने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो ना अंश, पूरे घर की जान बन चुका है, इसके बिना किसी का भी दिल नहीं लगेगा, तो तुम एक बार फिर अपने फैसले पर गौर कर लो। दादाजी, जो कि अभिमान से बातचीत करने के बाद बाहर आए थे, उन्हें इस बात के बारे में पता चल चुका था कि अरमान अंश और आस्था को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, तो इसीलिए दादाजी अरमान से सलाह मशवरा करने के लिए वहां आए थे और अभिमान जी भी उनके साथ थे। और जब उन दोनों ने देखा कि अरमान चुपके चुपके अपने बेटे को प्यार कर रहा है, उससे दाते कर रहा है, तो दोनों ही इमोशनली मुस्कुरा दिए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा कि अरमान सोते हुए अंश को जगाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही वो दोनों अंदर आ गए और उसे अंश को जगाने से मना करने लगे। अब दादाजी अरमान को देखकर कड़क आवाज में बोले, बेटा अगर तुम आस्था के बिना नहीं रह पाओगे तो तुम्हें उसे भेजने की जरूरत ही क्या है? मुझे लगता है कि तुम्हें उसे कहीं नहीं भेजना चाहिए और अपने पास ही रखना चाहिए। और अगर उसके दादाजी बीमार हैं तो बेटा तुम खुद अपने प्राइवेट जेट के द्वारा भी तो आस्था को उनसे मिलवाकर लेकर आ सकते हो ना, तो तुम्हें आस्था को वहां भेजने की क्या जरूरत है? ये सवाल सुनते ही अरमान ने आह भरी और चुपके से अंश को प्यार से निहारा। उसके बाद वापस से अपने पिता और दादाजी को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, इस वक्त इन दोनों का यहाँ से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है दादाजी, क्योंकि ये दोनों अरमान सिंघानिया की कमजोरी बन चुके हैं। अब जैसे ही अरमान ने थोड़े रहस्यमयी तरीके से ये कहा, वैसे ही अभिमान जी और दादाजी दोनों ही चौंक गए और दोनों ने एक दूसरे को नासमझी में देखा, फिर अरमान की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। अब दादाजी अरमान से ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, आखिर तू कहना क्या चाहता है, तो इन्हें कितने दिनों के लिए वहां भेज रहा है और तू करने क्या वाला है? अरमान ने दादाजी और अभिमान जी को एक नजर देखा और अपने होंठ से कोड़े और बिना कुछ कहे अंश को दादाजी की गोद में दे दिया और तुरंत वहां से बाहर निकल गया। और वहीं दादाजी अपना सर पकड़कर बैठ गए और परेशान मन से बोले, ये क्या हुआ है तेरे बेटे को, ये इतना अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रहा है? आज इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें पत्थर दिल अरमान वापस समा गया है? इसका ये बर्ताव मुझे पूरी तरह से डरा रहा है, बेटा हुआ क्या है तेरे बेटे को? वहीं अभिमान जी भी गहरी सोच में डूब गए और कुछ सोचते हुए धीरे से बोले, कहीं अरमान को वीर का सच तो पता नहीं चल गया? अब जैसे ही अभिमान जी ने ये कहा, वैसे ही दादाजी के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया और अब उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं था क्योंकि उसमें अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे और वो तुरंत बैठते से चले गए। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा के सामने अब उसका बेटा वीर खड़ा हुआ था। वीर की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और वो लगातार अपनी माँ को नाराजगी से घूर रहा था। वीर अपनी माँ से बहुत प्यार किया करता था
लेकिन जिस वक्त उसकी माँ ने उसके सर के बाल तोड़कर अभिमान जी के हाथों में थमा दिए थे और कहा था कि वो उनका डीएनए टेस्ट करवा लें, तो ये सुनते ही वीर का माथा टनका और अगले ही पल वो अपनी माँ से लगातार सवाल करने लगा। आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या ये बात सच है कि मैं अभिमान सिंघानिया का बेटा हूँ और अरमान सिंघानिया मेरा बड़ा भाई है? जैसे ही वीर ने दांत पीसते हुए ये सवाल पूछा, तो वैसे ही वसुंधरा उससे नजरें चुराते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए उसने वीर का हाथ थामा और अगले ही पल सिर हिलाकर हामी भरी और फिर धीरे से बोली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वीर कि ये बात तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन ये बात सच है। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि अभिमान पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था और उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। फिलहाल एक किराए के घर में हम लोग रह रहे थे, उसकी नौकरी वगैरह सब कुछ छूट चुकी थी और उसे शराब की लत लग गई थी और मेरे लिए उसके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन जिस पल अमरेंद्र मेरी जिंदगी में आया, तब मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी बेटा। अरमान तो अपने पिता के साथ रहना चाहता था और वैसे भी मैं अरमान को अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अमरेंद्र को सबसे पहले इस बात का यकीन दिलाया कि तुम उसके बेटे हो और तब जाकर उसने खुशी खुशी तुम्हें अपनाया और तुम्हारे नाम अपनी सारी धन दौलत कर डाली। लेकिन अब सिचुएशन पलट चुकी है बेटा, अब बागडोर अरमान और अभिमान के हाथों में है। उनके जितना अमीर पावरफुल आदमी इस पूरे देश में कोई नहीं है। अगर हमें अपनी जिंदगी आराम से गुजारनी है तो हमें वापस से उन लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा और उनकी जिंदगी में वापस जाने का मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था कि मैं तुम्हारी जन्म की सच्चाई अभिमान को बता दूं। इसीलिए मैंने उसे सारा सच बता दिया और तुम वाकई में अभिमान के ही बेटे हो। इस वक्त ये बात सुनकर तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ये बात को एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम अभिमान सिंघानिया के बेटे हो और अगर हमें एक बार फिर से रॉयल जिंदगी जीनी है तो हमें सिंघानिया परिवार में जाना होगा। आपको क्या लगता है, क्या चल रहा था वसुंधरा के दिमाग में और आगे क्या होगा आस्था और अरमान की इस कहानी में, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।